नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 हवाई अड्डों के विकास के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्तरा को उपभोक्ताओं से LPG शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण के अंतिम दिन आज नालंदा और पटना जिले का दौरा करेंगे। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय समेत आसपास के जिलों में धूल भरी आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्ष के लिए लागू करने की मंजूरी दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए का परिव्यय आएगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसमें टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को किफायती हवाई यात्रा सुगम होगी।
प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। कल राज्यसभा ने विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विधेयक में ट्रांसजेंडर की श्रेणी को फिर से परिभाषित करने, स्व अनुभूत लैंगिक पहचान के प्रावधान को हटाने और कई सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों के साथ ट्रांस मैस्कुलिन व्यक्तियों को इसके दायरे से बाहर करने का प्रयास किया गया है।
ट्रांसजेंडरों को कानूनी मान्यता मिलती रहेगी और उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। यह अधिनियम हमारी सामूहिक अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। यह ट्रांसजेंडरों को सक्षम बनाने वाला है, सशक्त बनाने वाला है और समुदाय को उसको गौरव लौटाने का प्रयास है जिसे लंबे समय से हाशिए पर रखा गया था।
केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।
हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। मैं बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार PNG विस्तार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में PNG कनेक्शन संबंधी आवेदन शुल्क और स्वीकृत समय सीमा को व्यवस्थित करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्तरां को उपभोक्ताओं से LPG शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि वह देश भर में इस पर कड़ी निगरानी रख रहा है और इसका उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या NCH मोबाइल ऐप के जरिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर और ई जागृति पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी या सीधे प्राधिकरण को भी शिकायत की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण के अंतिम दिन आज नालंदा और पटना जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री कुमार नालंदा जिले में 494 करोड़ रूपये लागत वाली 106 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे 316 करोड़ रूपये की लागत से 110 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा जन संवाद को संबोधित करेंगे। इधर पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 583 करोड़ रुपए लागत वाली 612 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 473 करोड़ रुपए लागत वाली 761 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही उनका जन संवाद का भी कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का भी नामांकन होगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. पी. राजेंद्र ने पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया गया। यह समिति निजी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सुझाव देगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने नाबार्ड सहकारी बैंकों और संगठनों से किसानों को समय पर पूंजी उपलब्ध कराने, लोन का प्रभाव बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर बल दिया है। श्री यादव नाबार्ड द्वारा पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पैक्स के कामकाज की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र के आठवें दिन आज देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है।
या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता।
मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ का यह स्वरूप अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। खोंचा भरने के लिए महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पूजा स्थलों पर भव्य सजावट की गई है। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह के रंग में सराबोर है। रामनवमी का त्योहार कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा झांकी और जुलूस निकाला जाएगा। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर के पट आज रात 2 बजे से खोल दिए जाएंगे। इधर रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों की 45 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख मंदिरों पर CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिलों किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र और राज्य सरकार की आसूचना इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक राज्य के विभिन्न भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कल अररिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय समेत आसपास के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली जिले के दिक्खी अंचल कार्यालय स्थित जिला खनन कार्यालय से डाटा ऑपरेटर राहुल कुमार रोशन और चपरासी प्रमोद कुमार को 50,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों शिकायतकर्ता से किट्टी भंडारण का लाइसेंस देने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। चैती छठ के दौरान पटना जिले में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक लापता बताए जाते हैं। एसटीआरएफ की टीम दोनों लापता युवकों की तलाश कर रही है। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के नेतपुर मौजा के पास घोड़परास के झुंड के हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। कल इस झुंड से बिछड़े एक हाथी ने स्वरलेटी इलाके में 1 युवक और भैंस को कुचलकर मार डाला। वन विभाग की टीम हाथियों को वन क्षेत्र में सुरक्षित वापस पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रोहतास जिले के दरिहट थाना क्षेत्र के भड़कुड़िया गांव में एक 4-पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य युवक घायल हो गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिरोल में पदस्थापित शारीरिक शिक्षा अनुदेशक वीणा कुमारी का अंक पत्र फर्जी पाया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में बिहार ओपन फेडरेटिंग शतरंज टूर्नामेंट के पहले दिन बिहार के रियान मोहम्मद ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय ग्रैंड मास्टर नारायण श्रीनाथ और रूस के ग्रैंड मास्टर पीटर क्रियाकोव की बाजी से हुआ। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 617 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्टेडियम खेलगांव में चल रही 28वीं राष्ट्रीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल बिहार की टीम ने रेगुलर श्रेणी में कांस्य पदक अपने नाम किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, देश में 100 नए हवाई अड्डे बनेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ईरान ने अमरीकी प्रस्ताव ठुकराया, रखी 5 शर्तें। प्रभात खबर लिखता है, घर के पास पीएनजी पाइपलाइन तो लेना होगा कनेक्शन, नहीं मिलेगा सिलेंडर। दैनिक भास्कर ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के हवाले से लिखा है, उद्यमियों को प्रोत्साहन और आर्थिक पैकेज भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ट्रंप काफी पीछे। आज अखबार की सुर्खी है, वंदे मातरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 हवाई अड्डों के विकास के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्तरां को उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के 5वें चरण के अंतिम दिन आज नालंदा और पटना जिले का दौरा करेंगे। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय समेत आसपास के जिलों में धूल भरी आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।